ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवतम चौथा स्कंद नौवा अध्याय। ध्रुव महाराज का घर लौटना। ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवे पुरुषाय तुभ्यम् अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। ध्रुव महाराज ने कहा, हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं। मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर आपने मेरी सोई हुई इंद्रियों को, हाथों, पांवों, स्पर्शेंद्रिय, प्राण तथा मेरी वाणी को जागृत कर दिया है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तात्पर्य, ध्रुव महाराज सहज ही अनुमान लगा सके कि आत्म साक्षात्कार करने और साक्षात श्री भगवान को देखने के पूर्व और पश्चात उनकी जो स्थिति थी उसमें कितना अंतर था। उन्हें अनुभव हुआ कि उनके प्राण तथा कार्य सुप्तावस्था में थे। जब तक मनुष्य आत्मदशा को प्राप्त नहीं होता तब तक उसके सारे कार्य मृत पुरुष के कार्य या प्रेत कार्य समझे जाते हैं। श्रील भक्त विनोद ठाकुर ने अपने एक गीत में स्वयं को इस प्रकार संबोधित किया है, हे जीवात्मा जागो, तुम माया की गोद में कब तक सोते रहोगे। अब तुम्हें नर देह प्राप्त हुई है, अतः तुम जगने और अपने को समझने का प्रयत्न करो। वेद में भी यही घोषित करते हैं, उठो उठो, तुम्हें मनुष्य रूप का वरदान प्राप्त हुआ है, अतः अपने आप को पहचानो। ये वैदिक आदेश है। ध्रुव महाराज को वास्तविक अनुभव हुआ कि इंद्रियों के प्रकाशित होने से वे वैदिक आदेश के सार को कि परमेश्वर ही परम पुरुष है, वह निर्गुण नहीं है, समझ सकते हैं। उन्हें तुरंत ही यह बात समझ में आ गई। उन्हें इसका ज्ञान था कि दीर्घ काल से सुप्त प्राय थे और अब वैदिक ज्ञान के अनुसार भगवान की स्तुति करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त कर सके हैं। सांसारिक पुरुष श्री भगवान की स्तुति या यशगान नहीं कर सकता, क्योंकि उसे वैदिक ज्ञान नहीं होता। अतः जब ध्रुव महाराज ने अपने आप में अंतर देखा तो वे तुरंत समझ गए कि यह भगवान की अहेतु की कृपा से हो रहा है। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक भगवान को नमस्कार किया और समझ गए कि उन पर भगवान की पूर्ण कृपा है। ध्रुव महाराज की इंद्रियों तथा मन का यह आत्म जागरण भगवान की अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से था। अतः इस श्लोक में आगत स्वधामना शब्द का अर्थ है पराशक्ति द्वारा। भगवान की पराशक्ति से ही आत्म प्रकाश संभव है। हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन में सर्वप्रथम भगवान की पराशक्ति हरे को संबोधित किया गया है। जब जीवात्मा पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देता है और सनातन दास के रूप में अपने को स्वीकार कर लेता है तो पराशक्ति कार्य करती है। जब कोई मनुष्य परमेश्वर के कहने या उनके आदेश पालन के लिए तत्पर रहता है तो वह सेवोन्मुख कहलाता है। उस समय पराशक्ति ही उससे भगवान के भेद को प्रकट करती है। पराशक्ति द्वारा प्रकट किए बिना कोई भगवान की स्तुति कर सकने में समर्थ नहीं है। चाहे संसारी जीव कितना ही दार्शनिक चिंतन अथवा काव्य सृजन क्यों न करे, वह तो भौतिक शक्ति की क्रिया प्रतिक्रिया माना जाता है। जब कोई पराशक्ति द्वारा सचमुच जागृत होता है तो उसकी सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और वह केवल भगवान की सेवा करता है। उस समय उसकी सारी इंद्रियां हाथ पांव कान जीभ मन आदि भगवान की सेवा में लग जाती हैं। ऐसे प्रकाश प्राप्त भक्त के न तो कोई भौतिक कार्य रह जाते हैं और न उसे सांसारिक कामों में व्यस्त रहना रुचिकर प्रतीत होता है। इंद्रियों को शुद्ध करके उन्हें भगवान की सेवा में लगाने की प्रक्रिया भक्ति कहलाती है। प्रारंभ में तो गुरु तथा शास्त्र के निर्देशन से इंद्रियों को मोड़ा जाता है, किंतु साक्षात्कार के बाद वही इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और सेवा भाव चलता रहता है। अंतर इतना ही होता है कि प्रारंभ में इंद्रियां यांत्रिक विधि से तत्पर होती हैं, किंतु साक्षात्कार के बाद वे आत्मज्ञान में लग जाती हैं। अनुवाद को दोहराइएगा। ध्रुव महाराज ने कहा, हरे कृष्णा। ध्रुव महाराज यहाँ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उनका सादर नमस्कार अर्पण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके कृपा मात्र से ही मेरे सारी इंद्रियां जग गई हैं। आपने मेरे अंदर प्रवेश करके मुझे ही जगा दिया है। मैं तो अब तक सोया हुआ था, लेकिन अब आपने आके मुझे जगा दिया है। जिस प्रकार से जब आदमी सोया हुआ रहता है तो उसकी इंद्रियां भी कार्य नहीं करती हैं, इंद्रियां भी सुप्त अवस्था में रहती हैं, लेकिन जब जग जाता है तो इंद्रियां भी काम करने लगती हैं, आंखें खुल जाती हैं, आंखें देखने लगती हैं, कान सुनने लगते हैं, आदमी बोलना शुरू कर देता है। इंद्रियां तो निद्रा की अवस्था में भी थी, इंद्रियां ठीक से काम भी कर रही हैं, उनमें कोई दोष भी नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्त अवस्था में इंद्रियां भी सुप्त रहती हैं। लेकिन जब आदमी जग जाता है तो फिर सारी इंद्रियां खुद ब खुद कार्य करने लगती हैं। यह है जागरण की अवस्था। तो शास्त्रों में बताया जाता है कि तीन प्रकार की चेतनाएं होती हैं। कोई बता सकते हो तीन प्रकार की चेतनाएं कौन सी हैं? एक है जागृति। आशा करते हैं कि सभी चेतना के इस स्तर में अब हों। दूसरा है स्वप्नावस्था, स्वप्न, और तीसरा है सुषुप्ति। सुषुप्ति मतलब घोर अंधकार, गहरी नींद में, जहां स्वप्न भी न आए। और स्वप्न सुषुप्ति से धीरे धीरे जागृति की ओर आते हैं तो स्वप्न अवस्था से गुजरना पड़ता है, तब हम सपने देखते रहते हैं, मैं राजा हूं महाराजा हूं, मेरे पास इतना धन है। तो यह स्वप्न अवस्था जो सुषुप्ति और जागृति के बीच की अवस्था है और उसके बाद में जागृति। तो चेतनाओं के हिसाब से इंद्रियां जागृत होती हैं या सुप्त होती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आत्मा जब जग जाती है, ये तो शरीर के जागरण और सुप्त अवस्था की बात है, ये तीन स्तर चेतना के, लेकिन आत्मा जब जग जाती है तो वो एक चौथे स्थिति कहलाता है। इन तीनों अवस्थाओं में आत्मा सोई हुई है, लेकिन जब आत्मा जग जाती है तो उसको कहते हैं, कोई बता सकते हैं चौथा स्तर कौन सा है चेतना का? हाँ, लेकिन उसे क्या कहते हैं संस्कृत में? समाधि या तुरिया। शास्त्रों में ये दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, समाधि या तो तुरिया। इस अवस्था में आत्मा वास्तव में जागृत हो जाता है और उस समय आदमी चाहे जागृति में हो, सुषुप्ति में हो, स्वप्नावस्था में हो, मानो कि सारी इंद्रियों को बिजली का करंट लग गया हो, ऐसे अवस्था हो जाती है। जैसे ध्रुव महाराज को प्रतीत हो रहा है कि मानो कि सब अंदर से मुझे एक ऐसी शक्ति आ गई है, एक ऐसे विशेष प्रेरणा मिल चुकी है कि मानो मैं जाग गया। पहले भी ध्रुव महाराज जगे हुए थे, लेकिन अभी वो अनुभव कर रहे हैं कि भगवान का साक्षात्कार करने के पहले और उनका साक्षात्कार करने के बाद में कितना अंतर है। जैसे हमें जब भूख लगती है तो आपकी दशा क्या होती है आप सब जानते हैं। हमें सब अनुभव है कि भूखे अवस्था में हमें कितना कष्ट होता है, कितना हम तरसते हैं भोजन के लिए, प्रसाद के लिए। लेकिन एक बार भोजन ग्रहण करते हैं तो करते करते कितना आनंद आता है, और करने के बाद में जब पेट भर जाता है तो मनोदशा क्या होती है, शरीर की दशा क्या होती है, अंतर पड़ता है, अंतर फर्क तो हमें महसूस होता है, उसका अनुभव हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब आदमी भक्ति में नहीं आता, भगवान की सेवा में नहीं लगता, तब तक वो ऐसे है जैसे आदमी भूखा है, तरस रहा है, तड़प रहा है, भोजन 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 मुझे भूख लगी है। उसी प्रकार से जो लोग भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, तड़प रहे संसार में, सुख कहाँ है, चैन कहाँ है, मन की शांति कहाँ है, और इस सुख चैन शांति के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, कोई पैसा तो कोई इंद्र तृप्ति तो कोई इधर कोई उधर। लेकिन जब भक्ति में आदमी आ जाता है तो उसे राहत मिलती है। इस संसार के सूरज रूपी गर्मी से या जलन से थोड़ा राहत मिल जाता है, और जब आत्म साक्षात्कार या भगवान का साक्षात्कार पूरी तरह से हो जाता है, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, तो क्या होता है, संतुष्ट हो जाता है बिल्कुल। जैसे ध्रुव महाराज ने प्रार्थना की, स्वामिन कृतार्थोऽस्मि वरम न याचे, आपका दर्शन हो गया, अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं और मुझे कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन जीवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदुच्यते। कृष्ण भगवान भी स्थिति का वर्णन करते हैं गीता के दूसरे अध्याय में, कहते हैं कि जब व्यक्ति प्रजहाति यदा कामान सारे काम वासनाओं को, सारे इंद्र तृप्ति के इच्छाओं को प्रजहाति जब त्याग देता है, और ये जो इंद्र तृप्ति की इच्छाएं हैं कहां से उत्पन्न होती है, सर्वान पार्थ मनोगतान, मन की गति से ये उत्पन्न होती हैं। तो इनको जब ये त्याग देता है, आत्मन्य एव आत्मना तुष्ट है, तुष्टि किसमें वो अनुभव करता है, अपने अंदर ही अंदर, अंतःकरण में, अपने अंतःकरण में वो संतुष्टि की अनुभूति करता है। स्थित प्रज्ञ सदुच्यते, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं, क्योंकि उसकी प्रज्ञा, उसका चित्त जो है वो बिल्कुल शुद्ध हो चुकी है, उसकी चेतना बिल्कुल स्थिर हो चुकी है, तो ऐसे अवस्था में आदमी बिल्कुल शांत हो जाता है। बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, सारे दुखों का नाश हो जाता है और बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो इस प्रकार से आत्म साक्षात्कार के पहले, आत्म साक्षात्कार के दौरान और आत्म साक्षात्कार के बाद की जो तीन अवस्थाएं होती हैं, ये तीन अवस्थाओं को भी चैतन्य महाप्रभु ने तीन शब्द दिए, तीन शब्दों से संबोधित किया। कोई कह सकते हैं आत्म साक्षात्कार के पहले जब आदमी को ज्ञान हो चुका है कि आत्म साक्षात्कार क्या है लेकिन आरंभ नहीं किया है, उसे कहते हैं संबंध की अवस्था। संबंध मतलब अभी अभी समझ चुका है जीव कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है और हमारे बीच में संबंध क्या है, बस इतना ही समझ चुका है। जब आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करता है, चेष्टा करता है और उस संबंध के अनुसार कार्यकलाप करता है, क्रियाकलाप करता है, तो उसे अभिधेय कहते हैं। और भक्ति के कार्य करते करते जब पूरी तरह से भगवत प्रेम, भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रयोजन। तो आत्म साक्षात्कार करते करते जो अंतर मनुष्य देह में आ जाता है, मनुष्य के चेतना में आ जाता है, उसका भी एक दृष्टांत श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में नव योगेंद्र महाराज निमी को बतलाते हैं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, किसी को पता है? भक्ति ही परेशान भवो विरक्तिर अन्यत्र तैश त्रिक एक काल प्रपद्यमानस्य यथाश्रतः स्यु तुष्टि पुष्टि क्षुद पायो अनुघासम। वो नव योगेंद्र जो है भक्ति की प्रक्रिया की तुलना खाने से कर रहे हैं, खाने की पद्धति से कर रहे हैं, खाने की प्रक्रिया। वो कहते हैं भक्ति ही, पहली बात भगवान की भक्ति, पर ईश अनुभव, भगवान का अनुभव हमारे हृदय में, दूसरी बात, और विरक्तिर अन्यत्र, भगवान से अलावा हर चीज से विरक्ति, वैराग्य की भावना। ये तीन चीजें त्रिक एक काल, तीनों चीजें एक काल है, एक ही समय में इनका उदय होता है। भक्ति ही परेशान भव विरक्ति अन्यत्र चैष त्रिक एक काल है। जब प्रपत्यमानस्य, जब आदमी पूरी तरह से शरण में जाता है भगवान का, यथाश्रतः स्यु यथा अश्नः, अश्नति, अश्नति मतलब खाना, जैसे कि जब आदमी भोजन करता है तो क्या होता है, तीन चीजें साथ साथ होती हैं, त्रिक एक काल है। तुष्टि, हमें अच्छा लगता है, आनंद आता है ना भोजन खाते समय, गुलाब जामुन खा रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, कोई अच्छा सा खा रहे हैं कुछ प्रसाद, तो अच्छा लगने लगता है, संतुष्ट हो जाते हैं, तो तुष्टि। पुष्टि, पुष्टि मतलब शरीर में धीरे धीरे से शक्ति आने लगती है, जैसे उपवास के दिन जब रात को सूर्यास्त के बाद में प्रसाद ग्रहण करते हैं तो कैसे धीरे धीरे से कमजोरी चली जाती है और शक्ति फिर से शरीर में चली जाती है। तो भोजन के हर एक घास से हमें तुष्टि और पुष्टि आने लगती है, और साथ साथ क्षुत अपायो, क्षुत अपायो मतलब भूख मिटने लगती है शनै शनै क्रम से, जैसे जैसे हम मुंह में भोजन डालते जाते हैं वैसे वैसे भूख कम होती जाती है। अनुघासम, घास मतलब हर एक जो मुंह में हम बार प्रसाद डालते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से जैसे भोजन लेते हुए हर एक घास से, घास कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रास, हर एक ग्रास से हमारी भूख मिट जाती है, पौष्टिकता आती है, संतुष्टि आती है देह में, ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति प्रपत्यमानस्य भगवान के शरण में जाता है, भगवान की सेवा करता है, शनै शनै उसके चेतना भी में भी ये तीन परिवर्तन एक काल एक समय आ जाते हैं। भगवान के प्रति प्रेम, भगवान का हृदय में अनुभव और संसार से विरक्ति वैरागी की भावना, ये तीन चीजें एक ही साथ में आती हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम भोजन लेते हैं तो पहले भूख मिट जाता है, फिर हमें आनंद आता है भोजन का और फिर हमें पौष्टिकता मिलती है, नहीं, शनि शनि तीनों का तीनों बढ़ते जाते हैं। उसी प्रकार से भक्ति भगवान की सेवा करते हुए भी उसी प्रकार से तीनों चीजों खुद ब खुद बढ़ने लगती हैं हमारे हृदय में। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने भगवान का साक्षात्कार किया है उसे खुद ब खुद अनुभव हो जाता है। एक बार प्रभुपाद जी को एक शिष्य ने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें आत्म साक्षात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है, किस तरह से? तो प्रभुपाद ने पूछा, आप भोजन लेते हो ना, खाते हो ना, रोज खाते हो? हाँ खाता हूं। तो आपको कैसे पता चलता है कि आपका पेट भर गया है? पता चलता है ना कि आपका पेट भर गया है, पता चलता, कैसे पता चलता? पता चल जाता है। अभी आप जवाब दीजिए, आपको कैसा पता चलता है कि आपका पेट भर गया? समझ में आता है ना, किसी को लिख के सर्टिफिकेट देना पड़ता है घर से सिक्का मार के कि हाँ आपका पेट भर गया, अभी सर्टिफिकेट ले लीजिए। आप जब खाते हैं खुद ब खुद पता चल जाता है कि अभी बस और नहीं चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से जब आदमी भगवान की सेवा करते रहता है, भगवान का अनुभव होने लगता है, खुद ब खुद अंदर ही अंदर से उसे अनुभव होने लगता है, और जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, शुद्ध प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होती, खुद ही समझ लेता है अंदर ही अंदर से, अंतःकरण से उसे पता चल जाता है, भगवान ही खुद उसे वो सिग्नल दे देते हैं, पता चल जाता है। लेकिन हाँ, ये कोई भावुक बात नहीं है, कोई आदमी सोच ले कि मैं तो भगवत प्रेम में के लहरों में मैं उड़ रहा हूं लेकिन वास्तव में इंद्र तृप्ति से आ सकता है तो नहीं। जैसे बीमार व्यक्ति को लगता है कि मेरा पेट भर गया लेकिन वास्तव में भरा नहीं, यह आदमी पानी पी लेता है तो पानी से लगता है कि पेट बहुत भर गया लेकिन 15 मिनट बाद और भूख लगने लगती है। तो ठीक उसी प्रकार से भावुकता से ये नहीं सोचना है कि मुझे भगवत प्रेम प्राप्त हो गया। भगवत प्रेम प्राप्त करने की एक परीक्षा भी है, क्या है? इंद्र तृप्ति से पूरी तरह से विरक्ति। इसीलिए नव योगेंद्र बता रहे हैं केवल भक्ति और पर ईश अनुभव नहीं बता रहे, साथ साथ में विरक्ति अन्यत्र, विरक्ति संसार से विरक्ति, अन्यत्र शब्द का भी महत्व है। इसका मतलब कृष्ण से, कृष्ण भक्ति से अन्य जो भी चीज है उससे विरक्ति। ऐसा नहीं कि कृष्ण भक्ति से ही विरक्ति हो जाए। कोई व्यक्ति कहे कि हमें कृष्ण भक्ति से भी विरक्ति है, विरक्त है बिल्कुल। इसलिए अन्यत्र कृष्ण भक्ति से अन्य जो भी चीजें हैं संसार में उनसे विरक्ति। प्रभुपाद जी कहते थे कि वृंदावन में भी ऐसे कई सहजीय लोग होते हैं जो ऐसा नाटक करते हैं कि उनका बहुत भगवत प्रेम है लेकिन साथ साथ में इंद्र तृप्ति भी करते हैं, पान चबाते हैं और नाना प्रकार के इंद्र तृप्ति के कार्य करते हैं, पुरुष स्त्री में संबंध रखते हैं। तो ऐसे करने से भगवत प्रेम कहां से होगा? तो भगवत प्रेम की परीक्षा केवल अंदर के प्रेम से नहीं है लेकिन इससे भी है कि इंद्र तृप्ति से हम कितने मुक्त हो चुके हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इस प्रकार से जब हमें भगवत प्रेम आ जाएगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। और कैसे पता चलता है? जब हम कोई भोजन लेते हैं तो पेट इतना भर जाता है कि एक कण भी ज्यादा हम नहीं खा सकते। उस समय क्या आपको और खाने की इच्छा होती है? मान लीजिए आपने इतना खा लिया कि यहां तक आपका पेट भर गया, उस समय अगर आपके सामने कोई गुलाब जामुन रखे, रसगुल्ला रखे, तो आपकी मन में कैसे विचार आएंगे? देखने की भी इच्छा नहीं होती गुलाब जामुन को, तो संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन और भोजन लेने से आपको एक प्रकार की घृणा सी हो जाती है। लेकिन भगवत भक्ति क्योंकि पूरी तरह से आध्यात्मिक है, इसलिए पूरी तरह से संतुष्टि तो होती है, लेकिन भगवान की सेवा से घृणा नहीं होती। संतुष्टि की अवस्था में हमें एक प्रकार की असंतुष्टि भी होती है कि हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो पूरी तरह से संतुष्ट हैं क्योंकि आनंद का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वो आनंद भी एक ऐसा सागर है जिसका हर क्षण, जिसकी हर क्षण में वृद्धि होती जा रही है। तो इसलिए एक विचित्र प्रकार का की संतुष्टि है, संसार के संतुष्टि की तरह नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से आध्यात्मिक स्तर पर है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो शुद्ध भक्त है संतुष्ट है, आनंद का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान के खोज में इधर उधर भटकते हैं। हे राधे, हे ब्रजदेव के चललिते, हे नंद सूनो कुतः। ये स्वरूप गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य कहते हैं कि छह गोस्वामी इधर उधर घोषणतावित सर्वतो व्रजपुरे, घोषणा करते हुए घूमते थे व्रजपुर में, अर्थात वृंदावन में। महाविह्वलो मतलब, महाविह्वलो मतलब बहुत विचलित अवस्था में घोषणा करते हुए भ्रमण करते थे व्रजपुर में, वृंदावन में। क्या घोषणा करते थे? हे राधे, हे व्रजदेव के चललिते, हे नंद सूनो कुतः। कुतः कहाँ है कृष्ण, कहाँ है श्रीमती राधा रानी, कहाँ है गोपियां, कहाँ है, ढूंढते फिरते थे। क्या उनके पास कृष्ण राधा कृष्ण नहीं है? अवश्य है, राधा कृष्ण का शुद्ध प्रेम उनके हृदय में है, पूरी तरह से उस ऊंचे आनंद का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इधर उधर भटक रहे हैं। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? इसे कहते हैं विप्रलंब सेवा, विरह का प्रेम, जो कि मिलन के प्रेम से भी कहीं अधिक है। ये चीज केवल अनुभव करने वाले को पता चलता है, गुलाब जामुन खाने वाले को ही पता चलता है कि गुलाब जामुन का स्वाद क्या है, देखने वाले को पता नहीं चलता। गुलाब जामुन खाने वाला भला कितना ही वर्णन क्यों ना करे, कितना स्वादिष्ट है, कितना मीठा है, कितना अच्छा है, लेकिन सुनने वाला समझ नहीं पाएगा जब तक कि वो खुद चख के नहीं देखता। तो ठीक उसी प्रकार से भगवत प्रेम की अनुभूति ये केवल वो व्यक्ति जानता है जो खुद स्वयं अनुभव कर रहा हो, और ऐसे अनुभूति के पश्चात क्या चेतना में बीतता है, क्या मन में क्या विचार आते हैं, कैसा अनुभव होता है, वो हमें अनुभवी करना होगा। तो इस वक्त ध्रुव महाराज यहां इस बात को अनुभव कर रहे हैं, पहले नहीं जानते थे, और अनुभव करने के बाद में उन्हें लग रहा है कि पहले तो मैं एक मृत व्यक्ति की तरह था, अब तो वास्तव में मेरा जीवन शुरू हो गया है। हालांकि मैं जगा हुआ था, फिर भी मैं सो रहा था, लेकिन अभी मैं वास्तव में जाग गया हूं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्यतः। शास्त्र में बताया जाता है श्री कृष्ण नाम आदि, जब श्री कृष्ण का नाम, उनका गुणगान, उनकी लीला, उनका विग्रह, उनका प्रसाद, इन चीजों का जब हम सेवन करते हैं, सेवोन मुखे ही जिह्वा दो, सेवा जब हम करते रहते हैं, इसकी शुरुआत जिह्वा से होती है। जिह्वा से हम श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करते हैं, श्री कृष्ण की लीला का उच्चारण कर सकते हैं, श्री कृष्ण के प्रसाद का सेवन कर सकते हैं। सेवोन मुखे ही जिह्वा दो स्वयं एव स्फुरत्यतः। जब श्री कृष्ण के नाम इत्यादि का सेवा करते हैं, उच्चारण करने से, प्रसाद ग्रहण करने से, खुद ब खुद स्फूर्ति आ जाती है, खुद ब खुद अंदर ही अंदर से अनुभूति आ जाती है कि कृष्ण कौन है, कृष्ण भक्ति क्या है, कृष्ण प्रेम क्या है, कृष्ण का रूप क्या है, कृष्ण की लीलाएं क्या है, कृष्ण के गुण क्या है। न भवेत ग्राह्यम इंद्रियै, इन ग्राह्य इंद्रियों से, इन भौतिक इंद्रियों से हमें कभी समझ में नहीं आएगा कि कृष्ण कौन है, कृष्ण का नाम क्या है, कृष्ण की लीलाएं क्या है। लेकिन जैसे जैसे भगवान की सेवा करते जाते हैं, स्वयं एव स्फुरत्यतः, स्फूर्ति स्वयं ही खुद ब खुद आ जाती है सेवा करने मात्र से ही। जिस प्रकार से सेवा करने मात्र से ही ध्रुव महाराज को अंदर ही अंदर से स्फूर्ति आ गई और ऐसे लगा जैसे बिजली का करंट सारे इंद्रियों में से चल रहा है, मैं जग गया हूं। भगवत भक्तिहीनस्य जात शास्त्र जपस्तपः अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। शास्त्र में बताया जाता है कि जब भगवत भक्ति की जाती है लेकिन उसमें कोई शास्त्रों के हिसाब से नहीं किए जाते, अगर कोई शास्त्र में निपुण हो, पंडित भी हो, अगर बड़ी बड़ी तपस्या भी कर रहा हो, बड़ा विद्वान हो, बड़ा तपस्वी हो, वैरागी हो, लेकिन भगवत भक्ति हीनस्य, अगर भगवान की भक्ति उसके हृदय में नहीं है तो ये ऐसे है जैसे अप्राणस्येव देहस्य, जैसे किसी देह में प्राण ना हो अर्थात मृत व्यक्ति के समान हो। मंडनम लोकरंजनम, अगर कोई व्यक्ति बड़ा विद्वान है लेकिन भक्त नहीं है तो उसकी विद्वत्ता केवल लोगों के, अज्ञानी लोगों के मनोरंजन के लिए है बस, और उसमें कोई खास लाभ नहीं है। जैसे कई कवि हैं, कवि जो लिखते हैं सुंदर कविताएं लिखते हैं लेकिन भगवान का कोई संबंध नहीं उससे, अच्छे अच्छे उपन्यास लिखते हैं, लेख लिखते हैं, किताब ग्रंथ लिखते हैं लेकिन उनमें भगवान का कोई नामो निशान नहीं है। तो फिर ऐसे जो साहित्य हैं ये केवल ऐसे हैं जैसे मृत अवस्था में कोई आदमी के ऊपर कोई आभूषण डालता है। अभी एक शव के ऊपर आप अच्छे अच्छे रेमंड का सूट डालिए और अच्छे गहने डाल दीजिए, अच्छी टोपी डाल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? कोई कीमत होती है आभूषणों की? कीमत शव के ऊपर क्या होती है? तो ऐसे अच्छे अच्छे साहित्य, तपस्या और ऊंचे कुल में जन्म एक अभक्त के ऊपर ऐसे हैं जैसे कि मृत शरीर के ऊपर आभूषण और अच्छे कपड़े, कोई कीमत नहीं। दूसरे शब्दों में, जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करते हम केवल शव कहलाते हैं। इसी बात को प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में भी बता रहे हैं। इसीलिए शास्त्रों में बताया जाता है कि हमें जागना चाहिए, इस निद्रा की अवस्था से हमें जागकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। जीव जागो गोरा चंद बोले, खोटा निद्र खाओ माया पिशाची रखोले। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हे जीव जागो जागो, माया की गोद में सोए हुए हो अभी जागो और कृष्ण भक्ति का जीवन का की अनुभूति करो। तो इस प्रकार से जागृत उत्तिष्ठ, ये भी उपनिषदों की घोषणा है, जागो और उठो उत्तिष्ठ। इस प्रकार से शास्त्र हमें बतला रहे हैं, असतो मा सद्गमय, मृतो मा अमृतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये अंधकार से ज्योति में आओ, प्रकाश में आओ, मृत अवस्था से अमृत अवस्था में आओ, अज्ञान से ज्ञान की अवस्था में आओ, ये सारे उपनिषदों के शास्त्रों के आदेश हैं। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि हमें आध्यात्मिक सुषुप्ति की अवस्था से आध्यात्मिक जागृति की अवस्था में आना है, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और हमें भी अनुभव है कि जब हम जैसे जैसे भक्ति करते रहते हैं धीरे धीरे से इंद्रियों में कुछ प्रेरणा सी लगने लगती है, सारे शरीर में चेतना में प्रेरणा से लगने लगती है, विशेष उत्साह भी लगता है। खास करके जब हम कीर्तन सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, या तो फिर भगवान का दर्शन कभी कभी कर लेते हैं, या कभी कभी शास्त्र पढ़ते समय एक प्रकार का एक निराला अनुभव होता है और भगवान कण मात्र थोड़ा थोड़ा सा हमें भक्ति का स्वाद देते रहते हैं, हमें आकर्षित करने के लिए उनकी ओर। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज हमें झलक दे रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने के पश्चात, भगवान का अनुभव करने के पश्चात क्या होता है। हमारा भी अनुभव ऐसे ही होगा, जब हमें भी ये स्थिति की प्राप्ति होगी भगवान की सेवा करने से, जब हमारे हृदय शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध प्रेम जागृत हो जाएगा, हम भी ऐसे अनुभव करना, हमें भी ऐसे अनुभव होंगे। तो उस समय के लिए हमें तैयारी करनी है, वही हमारे जीवन की परिपूर्णता है। उस समय में वास्तव में हम कह सकते हैं कि मैं जाग गया हूं, नहीं तो अब तक हम सोए हुए हैं। अभी तो केवल हम सोने निद्रा से उठने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कुंभकर्ण, लेकिन कुंभकर्ण को जगाने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ा, तो हमें भी जगाने के लिए दूसरे वैष्णव को कितना प्रयत्न करना पड़ता है। जागो जागो, जप के समय भी हम सो जाते हैं, भागवत क्लास के समय भी हम सो जाते हैं, सोते समय तो सो ही जाते हैं लेकिन जागते समय भी सोए जाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही आतुर रहना चाहिए और भक्ति को बहुत ही गंभीरता से लेनी चाहिए। इस प्रकार से हम जीवन की सफलता को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे और वास्तव में हम सारे जगत को जगा पाएंगे। और जगाने के लिए हमारा सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस प्रकार से सोए हुए व्यक्ति को हम आवाज देकर उठाते हैं, उसी प्रकार से सोए हुए आत्मा को हम हरे कृष्ण महामंत्र से जगा सकते हैं, उठा सकते हैं। जिस प्रकार से सोए हुए व्यक्ति को आप बिजली चलाकर लाइट से जगा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से दिव्य ज्ञान के प्रकाश से हम आत्मा को जगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हरि नाम से और कृष्ण कथा के माध्यम से अपने आप को और सारे जगत को हम जगा सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई मोक्ष ढूंढ सकते हैं, जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग जाते हैं वो ज्यादातर भक्ति मार्ग में नहीं होते हैं, इसलिए वो इधर उधर पहाड़ों में, हिमालय में, समंदर में, नदी के नीचे, पानी के भीतर, ऐसे जगह जाते हैं। लेकिन भक्त को इस चीजों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भक्तों को केवल यही एकमात्र वस्तु चाहिए। क्या है वो? हरिनाम तो से भी ज्यादा सत्संग। सत्संग में हृदय में स्थित भगवान का उदय होता है। हैं तो सही भगवान, लेकिन उनका अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि हृदय में बहुत मैल जमा हुआ है। जब हृदय में मैल जमा हुआ है तो भगवान को हम देख नहीं पाते हैं। जब मैल हट जाता है तब भगवान का अनुभव कर पाएंगे। तो मैल हटाने के लिए हमें लॉन्ड्री में आना पड़ता है। ये मंदिर क्या है, सत्संग क्या है? आध्यात्मिक लॉन्ड्री है, जिसमें हृदय में स्थित हृदय को धुला दिया जाता है, धो डालते हैं। इसलिए फिर से मैल जमा नहीं करना चाहिए बाहर जाकर। यहां आते हैं तो हृदय धुल जाता है, तो धीरे 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 से भगवान अंदर से प्रकट हो सकते हैं। सत्संग में आकर हम भगवान का नाम लेते हैं, हरि कथा सुनते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं, चीजों से शनि शनि हृदय शुद्ध हो जाता है, फिर भगवान प्रकट हो सकते हैं। और कोई प्रश्न? रम्य, वो तो हमारे ऊपर है, हम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है हमारी इच्छा कितनी तीव्र है। क्या हम केवल भगवान को चाहते हैं, या भगवान को चाहते तो है लेकिन साथ साथ में ये भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं? कितने एकाग्र चित्त से हम चाहते हैं, अनन्य भाव से जब भक्ति करेंगे तब एक क्षण कर पाएंगे। जब तक पृथक भाव रहेगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस हद तक हम हमारी भावना अनन्य है, अनन्य भक्ति करते हैं, उस हद तक हम भगवान का साक्षात्कार करते हैं। तो वो हमारे हाथ में, राजा खटवांग ने एक क्षण में कर दिया, हमें शायद कई जन्म लग गए हैं, तो हमारे हाथ में है। भगवान का साक्षात्कार हमें इस जन्म में करना है नहीं करना है। अगर हम अभी इसी क्षण तीव्रता से दृढ़ता से निर्णय ले लें, जैसे गुरु महाराज ने लिया, एक क्षण में ले लिया उन्होंने निर्णय और कर दिया, तो जैसे ध्रुव महाराज ने दृढ़ता से कर लिया, उसी प्रकार से अगर हम करेंगे तो इसी जीवन में कर पाएंगे, क्यों नहीं। और अगर नहीं करेंगे तो जितने धीरे हम जाना चाहते हैं उतने धीरे हम कर सकते हैं, 10 जन्म 20 जन्म 50 जन्म लगा सकते हैं। जैसे एक विद्यार्थी चाहे तो एक ही साल में पास हो सकता है, या तो कोई चाहे तो 2 साल लगाएगा, कोई 5 साल, कोई 10 साल। ऐसे भी कितने विद्यार्थी हैं जो एक एक क्लास में 5, 6, 7 साल लगाते हैं, और 3 साल के कोर्स को पास करने के लिए 10 साल 12 साल लगाते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे हाथ में है, भक्ति में परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए कितना समय लेना चाहते हैं। इसलिए पूरी तरह से शरण जाना चाहिए भगवान। भक्ति करते समय क्या विरक्ति की भावना खुद ब खुद आती है, उसके लिए अलग भी प्रयास करना पड़ता है। दोनों खुद ब खुद तो आती ही है, लेकिन साथ साथ हमें भी चेष्टा करनी चाहिए, हमें भी प्रयास करना चाहिए। जैसे अगर कोई कहे कि वैसे होटल में जाना ठीक नहीं है, बाहर का खाना खाना ये सब ठीक नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि भक्ति से खुद ब खुद हो जाएगा, तो जब तक खुद ब खुद हमें प्रेरणा नहीं मिलेगी हम खाएंगे जाकर, आइसक्रीम खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, खाते रहेंगे, नहीं। खुद भी चेष्टा करनी है वैराग्य के लिए, खुद भी अपने ऊपर एक नियम संयम लगाना है कि नहीं, ये वैराग्य हमें करना चाहिए। हालांकि मन कहता है कि चलो जाएं, थोड़ा पिक्चर देखें, होटल में खाएं, टीवी देखें, सिनेमा देखें, लेकिन नहीं, खुद भी हमें प्रयास करना चाहिए। और साथ साथ जैसे भक्ति कर रहे हैं, खुद ब खुद ही वैराग्य की भावना आ ही जाएगी, तो दोनों साथ साथ चलने चाहिए, फिर हमारी वैराग्य अच्छी तरह से चलेगा। और कोई प्रश्न है? भगवान के विरह को प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से हमारी साधना करनी चाहिए, भगवान से तीव्र प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके प्रति शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो। तीव्रता, ये तीव्रता, इच्छा की तीव्रता से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और इसका मतलब है कि हमारे लिए इस समय हम नियमों का सख्त तरीके से पालन करें। हमारे स्तर में केवल नियमों के पालन से और आतुरता से भगवान प्रसन्न होंगे। जब भगवान प्रसन्न होंगे उनकी कृपा आएगी, उनकी कृपा आएगी तो प्रेम आएगा। सही भी है नहीं भी है। अब यहां हमारे कितने भक्त हैं जो स्त्री शरीर में है, उनकी मन की दिशा क्या, दशा क्या है, और बाहर संसार के जो पुरुष हैं उनकी दशा क्या है। क्या हम कह सकते हैं कि बाहर के लोग जो भक्त नहीं है वो श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो पुरुष हैं? उनमें कितनी आसक्ति है। तो भक्ति स्त्री और पुरुष इस उपाधि से परे है। चाहे कोई स्त्री हो पुरुष हो, शुद्ध भक्त बन सकते हैं, कोई बंधन नहीं है, शरीर का बंधन नहीं होता। तो उसी प्रकार से स्त्री शरीर में वैराग्य की भावना भी अवश्य आ सकती है, अगर हम सही तरह से भगवान की भक्ति करेंगे तो आ सकती है। लेकिन हमें स्त्री के लिए केवल इतना है कि गृहस्थ जीवन में रहकर या तो वानप्रस्थ में रहकर उस वैराग्य को हृदय में ही इसका अनुशीलन करते रहना है। बाहरी वैराग्य, जैसे रविवार को चर्चा कर रहे थे, बाहरी वैराग्य स्त्री शरीर में नहीं होता, यही साक्षात्कार का वर्णन है। प्रभुपाद कहते थे कि जो तात्पर्य है ये मेरे भक्ति के आनंद का एक प्राकट्य है, दीज परपोर्ट्स आर माई डिवोशनल एक्सटेसिस, ये तात्पर्य ही मेरे भक्ति के आनंद के प्राकट्य रूप है। और वैसे तो कई बार ऐसे लक्षणों से पता चल गया कि प्रभुपाद जी कितने